आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
नमस्कार, आकाशवाणी के कार्यक्रम विश्लेषण में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका अरोड़ा। आज के कार्यक्रम का विषय है यूपीआई के 10 वर्ष, भारत की डिजिटल भुगतान क्रांति। भारत में डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई ने पिछले एक दशक में बड़ा बदलाव किया है। आज यूपीआई भारत के डिजिटल भुगतान तंत्र की रीढ़ और वित्तीय समावेशन का एक अहम माध्यम बन चुका है। भारतीय रिजर्व बैंक के नियामक निगरानी में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी NPCI द्वारा 25 अगस्त 2016 को शुरू किया गया यूपीआई अब अपने संचालन के 10 वर्ष पूरे कर रहा है। इन 10 वर्षों में यूपीआई के इस्तेमाल में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2016-17 में जहां यूपीआई के जरिए वार्षिक लेन देन की मात्रा 1,78,00,000 थी, वही वित्त वर्ष 2025-26 में ये बढ़कर 24,162 करोड़ से अधिक हो गई है, यानी लेन देन की मात्रा में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई। प्रधानमंत्री बताते हैं कि यूपीआई सिर्फ एक ऐप नहीं है, बल्कि ये नीति, प्रक्रिया और वितरण का एक शक्तिशाली संगम है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
बीते दशक भारत के जिस रिफॉर्म ने दुनिया में हलचल मचा दी है वो है यूपीआई, भारत का डिजिटल पेमेंट सिस्टम। ये सिर्फ एक ऐप नहीं है, ये पॉलिसी, प्रोसेस और डिलीवरी के एक शानदार कन्वर्जेंस का प्रमाण है। जो लोग कभी बैंकिंग और फाइनेंस से जुड़े बेनिफिट्स के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, यूपीआई देश के ऐसे नागरिकों को सर्व कर रहा है। ये जो डिजिटल इंडिया है, डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, जनधन, आधार, मोबाइल की ट्रिनिटी है, ये रिफॉर्म किसी कंपल्शन से नहीं हुआ है, ये हमारा कन्विक्शन था।
तो सवाल है, यूपीआई ने भारत के भुगतान तंत्र को किस तरह बदला? छोटे से छोटे दैनिक भुगतान से लेकर बड़े धन हस्तांतरण तक इसकी भूमिका कैसे बढ़ी और भारत का ये डिजिटल भुगतान मॉडल किस तरह वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना रहा है? इन्हीं सवालों को समझने की कोशिश करेंगे आज के विश्लेषण में। आइए शुरुआत करते हैं हमारी पहली रिपोर्ट से।
भारत में डिजिटल भुगतान को आसान, तेज और व्यापक बनाने में यूपीआई की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। यूपीआई का ऐसा अंतर संचालनीय भुगतान माध्यम है जिसके जरिए लाभार्थी को राशि रियल टाइम में उपलब्ध हो जाती है। एक ही एप्लीकेशन के माध्यम से पीयर टू पीयर यानी दो व्यक्तियों के बीच सीधे पैसे भेजने और पीयर टू मर्चेंट यानी किसी दुकानदार या व्यापारी को भुगतान करने की सुविधा मिलती है। इस अवधि में यूपीआई लेन देन की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर यानी CAGR 188% रही। वहीं वार्षिक लेन देन मूल्य वित्त वर्ष 2016-17 में 0.07 लाख करोड़ रुपए था, जो वित्त वर्ष 2025-26 में बढ़कर 314 लाख करोड़ रुपए हो गया। इसकी चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर 155% रही। वित्त वर्ष 2025-26 में यूपीआई लेन देन की मात्रा में वर्ष दर वर्ष 30% और मूल्य में 21% की वृद्धि दर्ज की गई। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी बैंक, लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक और सहकारी बैंक शामिल हैं। यूपीआई की पहुंच का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत के डिजिटल भुगतान में इसकी हिस्सेदारी 84% रही और वर्ष 2025 में वैश्विक रियल टाइम भुगतान में यूपीआई की हिस्सेदारी 49% रही। यूपीआई का इस्तेमाल केवल बड़े शहरों या बड़े कारोबारों तक सीमित नहीं है, छोटे दुकानदारों, स्थानीय व्यापारियों और आम लोगों के रोजमर्रा के भुगतान में भी इसका इस्तेमाल लगातार बढ़ा है। यूपीआई के शुरुआती महीने अगस्त 2016 में 90,000 लेन देन हुए थे। आज वही प्रणाली एक दिन में औसतन 66 करोड़ लेन देन संसाधित कर रही है। ये बदलाव केवल तकनीकी विकास का आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये बताता है कि डिजिटल भुगतान किस तरह आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। लेकिन यूपीआई की सफलता को समझने के लिए ये देखना भी जरूरी है कि इसका इस्तेमाल किस तरह के भुगतान में हो रहा है।
यूपीआई ने भुगतान को केवल तेज और आसान ही नहीं बनाया बल्कि छोटे छोटे दैनिक भुगतानों को भी डिजिटल अर्थव्यवस्था से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दुकान पर भुगतान हो, किसी व्यक्ति को पैसे भेजने हो या किसी व्यापारी को डिजिटल भुगतान करना हो, यूपीआई ने इन सभी को एक ही डिजिटल ढांचे से जोड़ दिया है। लेकिन यूपीआई के लेन देन की प्रकृति क्या है? पीयर टू पीयर और पीयर टू मर्चेंट लेन देन में क्या अंतर है और छोटे भुगतानों में यूपीआई की भूमिका कितनी बड़ी है? आइए सुनते हैं हमारी दूसरी रिपोर्ट।
यूपीआई की सफलता का एक महत्वपूर्ण पहलू है इसका व्यापक और विविध इस्तेमाल। यूपीआई के लेन देन के विश्लेषण से पता चला है कि व्यक्ति से व्यापारी यानी P2M लेन देन कुल लेन देन की मात्रा का 63% है। इससे पता चलता है कि छोटे और बार बार होने वाले खुदरा भुगतानों में यूपीआई का व्यापक इस्तेमाल हो रहा है। दूसरी ओर व्यक्ति से व्यक्ति यानी P2P लेन देन मूल्य के मामले में सबसे अधिक है। कुल लेन देन मूल्य में P2P की हिस्सेदारी 71% है। यानी UPI एक तरफ रोजमर्रा के छोटे खुदरा भुगतानों का माध्यम है तो दूसरी तरफ लोगों के बीच बड़े धन हस्तांतरण का भी महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है। वहीं P2P लेन देन में 59% भुगतान 500 रुपए से कम के थे। इसके साथ ही 500 रुपए से अधिक लेन देन की हिस्सेदारी 41% रही। यूपीआई ने डिजिटल विभाजन को कम करने, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और डिजिटल वित्तीय सेवाओं की पहुंच का विस्तार करने में भी भूमिका निभाई है। लेकिन यूपीआई की कहानी केवल भारत तक सीमित नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में यूपीआई ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई है। आज यह कई देशों में संचालित हो रहा है और सीमा पार डिजिटल भुगतान के वैश्विक मंच के रूप में उभर रहा है।
भारत में शुरू हुई यूपीआई की डिजिटल भुगतान प्रणाली आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान बना चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने यूपीआई को लेन देन के आधार पर दुनिया की सबसे बड़ी रियल टाइम भुगतान प्रणाली माना है। वर्ष 2025 में वैश्विक रियल टाइम भुगतान में यूपीआई की हिस्सेदारी 49% रही। तो किन देशों तक पहुंच चुका है ये यूपीआई और आने वाले वर्षों में भारत के डिजिटल भुगतान के लिए इसका क्या महत्व हो सकता है? आइए सुनते हैं हमारी तीसरी और अंतिम रिपोर्ट।
वैश्विक मंच पर यूपीआई और डिजिटल भुगतान का अगला दशक। भारत में डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में शुरू हुआ यूपीआई आज वैश्विक स्तर पर पहचान बना चुका है। यूपीआई की अभूतपूर्व वृद्धि, विश्वसनीयता और अंतर संचालनीयता को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इसे लेन देन के आधार पर दुनिया की सबसे बड़ी रियल टाइम भुगतान प्रणाली माना है। वर्ष 2025 में वैश्विक रियल टाइम भुगतान में यूपीआई की हिस्सेदारी 49% रही। भारत में यूपीआई के जरिए हर दिन औसतन 66 करोड़ से अधिक लेन देन संसाधित किए जा रहे हैं। इससे भारत त्वरित, सुरक्षित और समावेशी डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में एक प्रमुख देश के रूप में उभरा है। यूपीआई अब सीमा पार डिजिटल भुगतान के वैश्विक मंच के रूप में भी आगे बढ़ रहा है। वर्तमान में यूपीआई 11 देशों में संचालित है। इनमें संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, सिंगापुर, मॉरिशस, कतर, कंबोडिया, ग्रीस और मालदीव शामिल है। इसका अर्थ है कि यूपीआई का प्रभाव अब केवल घरेलू डिजिटल भुगतान तक सीमित नहीं है। ये भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना मॉडल की वैश्विक पहुंच को भी दर्शाता है। यूपीआई की सफलता को केवल लेन देन की संख्या से नहीं मापा जा सकता। इसकी बड़ी उपलब्धि ये भी है कि इसने डिजिटल भुगतान को आम लोगों और व्यापारियों के रोजमर्रा के जीवन से जोड़ा है। आने वाले समय में नए उपयोगकर्ताओं और व्यापारियों को यूपीआई पारितंत्र में शामिल करना महत्वपूर्ण होगा।
भारत में यूपीआई के 10 वर्ष डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन की कहानी बताते हैं। यूपीआई से जुड़े सक्रिय बैंकों की संख्या वित्त वर्ष 2016-17 के 44 से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में 703 हो गई। आने वाले समय में नए उपयोगकर्ताओं और व्यापारियों को जोड़ना, तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना और वित्तीय समावेशन को और व्यापक बनाना यूपीआई के अगले दशक की महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं होंगी। इसी उम्मीद के साथ आज के विश्लेषण कार्यक्रम में बस इतना ही। इस कार्यक्रम को तैयार किया है हमारी सहयोगी श्रेया पाठक ने। तकनीकी सहयोग दिया है अलका सिंह ने। नमस्कार।